ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सभी 7 प्रदेशों में सुविधा संपन्न वर्ण उपचार केंद्र स्थापित करने की योजना तत्काल आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों के उपकुलपतियों को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने किया निर्देश। देश के कुछ स्थानों में आज रात भारी बारिश की संभावना जताते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सतर्कता अपनाने का किया है आग्रह। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सभी 7 प्रदेशों में आधुनिक वर्ण उपचार केंद्र स्थापित करने और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में वर्ण वार्ड को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों के उपकुलपतियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र, प्रदेश और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता, सेवा सुधार, डिजिटल तकनीक के उपयोग और सुशासन को प्रभावी बनाने के साथ साथ निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ओपीडी सेवाओं में कम से कम 10% रियायत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उपकुलपतियों ने चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल रूपांतरण, बुनियादी ढांचे के विकास और संस्थानों की भूमि अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर भी अपने सुझाव रखे। देश के अधिकांश हिस्सों, राजधानी काठमांडू घाटी सहित में लगातार बारिश हो रही है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने आज रात बारिश और तेज होने की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मकवानपुर गढ़ी और म्यागदी में सबसे अधिक 121 मिलीमीटर, सुनसरी में 117 और उदयपुर में 106 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। काठमांडू के चंद्रागिरी क्षेत्र में 93.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि देशभर में मॉनसून सक्रिय है और आज रात कोशी प्रदेश के पहाड़ी व तराई क्षेत्रों तथा बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बाढ़, भूस्खलन और डूबान की आशंका को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीच सड़क विभाग ने कहा है कि बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर सड़क अवरुद्ध हो सकने के मद्देनजर विभाग पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। कालीकोट जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सान्नी त्रिवेणी गांवपालिका 6 के काप्री खोला क्षेत्र में हुआ। पुलिस के अनुसार आज दोपहर करीब 1:30 बजे आटा पिसवाने के लिए पानी से चलने वाली चक्की पर गए 46 वर्षीय मंदिर साउद और 76 वर्षीय लाल बहादुर साउद भूस्खलन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मकवानपुर जिला प्रशासन ने लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए काठमांडू जाने वाले 2 प्रमुख मार्गों पर यातायात रोक दिया है। प्रशासन के अनुसार हेटौड़ा ललितपुर को जोड़ने वाले कांति लोकपथ पर आज शाम 5 बजे से अगले आदेश तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वहीं हेटौड़ा भीमफेदी देवराली सिसनेरी काठमांडू मार्ग पर आज शाम 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम तथा सड़क संबंधी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से अवरुद्ध नेपाल की राष्ट्रीय गौरव परियोजना काली गंडकी कॉरिडोर करीब 8 घंटे बाद यातायात के लिए फिर खोल दिया गया है। बागलुंग जिले के जैमिनी नगरपालिका 8 के बेलबगर क्षेत्र में आज सुबह मलबे सहित भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई थी। लगातार बारिश के बीच राहत दल ने भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग बहाल किया। सड़क बंद होने से बागलुंग के दक्षिणी क्षेत्र की यातायात सेवा प्रभावित हुई और मुक्तिनाथ जा रहे पर्यटक रास्ते में फंस गए थे। पुलिस ने सड़क खुलने की पुष्टि करते हुए यात्रियों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 213वीं जयंती आज देश और विदेशों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भानु प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि भानुभक्त राष्ट्रीय विभूति, नेपाली राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक और जन जन के प्रतिनिधि रचनाकार थे। सभामुख अर्याल ने कहा कि भानुभक्त ने रामायण का नेपाली में अनुवाद कर आम लोगों के लिए धर्म, दर्शन, नीति और आदर्शों को सहज रूप से सुलभ बनाया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पासपोर्ट विभाग ने आज से नई पासपोर्ट उत्पादन एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पासपोर्ट सेवा शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विभाग ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए नई प्रणाली लागू की है। विभाग के अनुसार करीब 1 करोड़ नेपाली नागरिकों के पासपोर्ट संबंधी विवरण सुरक्षित रूप से नई प्रणाली में स्थानांतरित किए गए हैं। नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएगी। संसदीय मामलों को कवर करने वाले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर सरकार को संसद और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय समितियों को निर्णयहीनता का शिकार बनने से रोकने के लिए कांग्रेस सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करेगी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर अर्जुन घिमिरे और प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष पद पर उमेश श्रेष्ठ की नियुक्ति की गई है। दोनों ने आज सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा से नियुक्ति पत्र ग्रहण किया। मौके पर मंत्री तिमिल सिन्हा ने दोनों से निष्पक्ष, जिम्मेदार और परिणामोन्मुख ढंग से कार्य करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल को भ्रामक सूचना और दुष्प्रचार जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना होगा और दूरसंचार प्राधिकरण को सेवा की गुणवत्ता और सुशासन पर विशेष ध्यान देना होगा। मौतरी जिले में दंपति को गोली मारकर डकैती करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गत 20 जेठ को सोनमा गांव पालिका 3 के खखना गांव में राम विश्वास यादव के घर में डकैती के दौरान उनकी बेटी किरण यादव के पैर में 2 गोलियां और दामाद ईश्वर नारायण यादव के दाहिने हाथ में 1 गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने बताया कि घायलों की हालत अब सामान्य है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समसी गांव पालिका 6 निवासी 21 वर्षीय अफरोज शेख, 24 वर्षीय शेख बारिक और गौशाला नगर पालिका 5 निवासी कृष कुमार मेस्तर के रूप में हुई है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी दोबारा लागू करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की घोषणा की है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा और अमेरिका इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए नया शुल्क लगाया जाएगा। वहीं ईरान के शीर्ष सैन्य मुख्यालय खातम अल अंबिया ने अमेरिका की घोषणा का विरोध करते हुए कहा कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चातुचक क्षेत्र स्थित एक बार में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीबीसी के मुताबिक रविवार देर रात हुए इस हादसे में दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग बिजली के कट आउट स्विच में लगी जिसके बाद तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरे बार में आग और धुआं फैल गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी 7 प्रदेशों में सुविधा संपन्न बर्न उपचार केंद्र स्थापित करने की योजना तत्काल आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों के उपकुलपतियों को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने किया निर्देश। देश के कुछ स्थानों में आज रात भारी बारिश की संभावना जताते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सतर्कता अपनाने का किया है आग्रह। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।